इशिका राधिका से मिलने के लिए सिंघानिया मेंशन आई हुई थी। वहां उसने राधिका को केशव से हुई मीटिंग के बारे में बताया था। अगले दिन की गैदरिंग में वो राधिका को अपने साथ ले जाने वाली थी। राधिका ने भी जाने के लिए हाँ कह दिया था। राधिका ने इशिका के लिए आयशा का कमरा अपने हिसाब से तैयार करवाना शुरू कर दिया था। उसके बाद वो इशिका से बोली, अच्छा इशिका, याद है तुम बचपन में उस बेसमेंट में मालविका के साथ रहती थी? मैंने सारा सामान हटवा दिया है, लेकिन अभी भी तुम्हारा सामान वहीं पर रखा हुआ है। कुछ जरूरी चीजें हैं तो निकाल लो बेटा। इशिका ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और उनके साथ बेसमेंट में जाने लगी। वो एक अंडरग्राउंड स्टोर रूम था, जहाँ सामान रखने के अलावा एक छोटी कमरे जितनी जगह छोड़ी हुई थी। वहाँ इशिका का बिस्तर लगा हुआ था। जब इशिका थोड़ी बड़ी हुई तो मालविका उसके साथ वहाँ रहने के बजाय आउटहाउस के एक कमरे में रहने लगी थी, इसलिए इशिका वहाँ अकेले रहती थी। इशिका जल्दी से वहाँ पर एक बड़ी सी अलमारी के पास गई। उसने सबसे नीचे का ड्रॉर पूरा खोल दिया था, जिसके आखिर में एक बॉक्स था। राधिका जाकर देखने लगी कि आखिर उस बॉक्स में क्या है। इशिका ने उसे खोलकर देखा तो उसमें ज्यादातर वही सामान था जो राधिका ने उसे दिया था। राधिका ने धीरे से कहा, इसने आज भी ये सब संभाल कर रखा है, लेकिन ये सब चीजें टूटी हुई हैं। जरूर आयशा और मालविका ने ऐसा किया होगा। मेरी बच्ची कितने मुश्किल हालातों में बड़ी हुई। राधिका की आंखें नम होने लगी थीं। राधिका इशिका के पास गई। उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। उसने इशिका से धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें ऐसी जिंदगी मिली? इशिका ने राधिका की तरफ देखा और उसके आंसुओं को साफ करके कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है माँ। अच्छा हुआ ना जो उस मालविका ने मुझे कोई नाम नहीं दिया था। पुलिस स्टेशन में मैंने अपना नाम खुद रखा था, वो भी आपके नाम से मिलता जुलता। हाँ, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, हमारा नाम एक जैसा साउंड करता है, राधिका और इशिका, राधिका ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। फिर वो इशिका से बोली, बेटा इन सबको फेंक देते हैं, ये सब बुरी यादें हैं। आई प्रॉमिस अब तक तुमने जो भी कमी महसूस की है वो मैं पूरी कर दूंगी। इशिका ने कुछ पल सोचकर हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ ठीक है, फेंक देते हैं, लेकिन एक चीज मैं नहीं फेंक सकती हूँ। बोलते हुए उसने बॉक्स का सामान पूरा बाहर निकाला तो उसके अंदर से एक अंगूठी निकली थी। वो एक पुराने जमाने की महंगी अंगूठी थी। उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का रेयर स्टोन लगा हुआ था। उस अंगूठी को देखकर राधिका ने पूछा, ये तुम्हें किसने दी? ये मुझे मेरे दोस्त ने दी थी, इशिका ने मुस्कुराकर बताया। अचानक ही उसे पुराने दिनों की याद आने लगी, जब किडनैपर्स के पास से वो उस लड़के के साथ वो बाहर निकली थी। उस लड़के ने उससे शादी का वादा किया था और वो अंगूठी देते हुए कहा था, अगर तुम्हें तुम्हारे घर वाले ज्यादा परेशान करें तो इस अंगूठी को लेकर मेरे घर पर आ जाना। इतना कहकर उस लड़के ने उसे एड्रेस बताया था जो इशिका को आज भी याद था। वो किसी पास के टाउन का एड्रेस था। उस अंगूठी ने उसे बहुत हिम्मत दी थी। इशिका ने उसे संभालकर छुपा दिया था ताकि मालविका उसे देखकर बेच ना दे। इशिका ने अपने गले की चेन को खोला और फिर उसमें उस अंगूठी को डाल दिया था। उसके बाद वो राधिका से बोली, ठीक है आप बाकी सामान को फेंक दीजिए। अंगूठी लेने के बाद इशिका वापस राधिका के साथ ऊपर आ गई थी। वो दोनों बातें कर रही थीं। रात के लगभग 10 बजे के करीब राधिका ने इशिका से कहा, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा होगा। इशिका ने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, वेट तो तब कर रहा होगा ना जब उसके पास मेरे लिए टाइम होगा। इशिका कुछ भी बताकर राधिका को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने हाँ में सिर हिलाया और राधिका को हक करने के बाद बाहर जाने लगी। इशिका ने बाहर कदम रखा ही था कि उसने देखा कि अभिमन्यु अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। अगर इशिका बाहर नहीं आती तो अभिमन्यु उसे बुलाने के लिए अंदर जाने वाला था। उसे देखकर इशिका एक पल के लिए चौंक गई थी और फिर गाड़ी में आकर बैठ गई। उसके बैठते ही अभिमन्यु ने धीरे से कहा, मुझे पता था तुम यहाँ पर हो, तभी तुम्हें लेने के लिए सीधा यहाँ चला आया। इशिका जवाब में हल्का सा मुस्कुरा दी तो अभिमन्यु आगे बोला, आई एम सॉरी कि आज रात मैं। इशिका समझ गई थी कि अभिमन्यु क्या कहना चाहता है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने बीच में कहा, कोई बात नहीं। अभिमन्यु ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखने लगा। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि प्रणाली के ब्लैकमेल करने पर उसे वहां जाना पड़ा था। अभिमन्यु जब अस्पताल में पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे कहा, मिस्टर राजवंश, मिस प्रणाली की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें समझा सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर अभिमन्यु को प्रणाली के रूम में लेकर गया। प्रणाली ने अपने गले पर चाकू लगा रखा था। अभिमन्यु उसे देखते ही जल्दी से तेज आवाज में बोला, ये क्या कर रही हो तुम प्रणाली, इसे अभी नीचे रखो। नहीं अभिमन्यु, पहले मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तुमसे शादी करने की उम्मीद थी, इसी वजह से मैं जी रही थी, तुमने तो मुझसे मेरे जीने की उम्मीद तक छीन ली। बोलते हुए प्रणाली रोने लगी थी। पहले भी प्रणाली ने उसे ब्लैकमेल किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे सच में वो अपना गला काट लेगी। अभिमन्यु उसके पास आते हुए बोला, प्लीज प्रणाली इसे नीचे रख दो और बच्चों की तरह जिद मत करो, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम उसे तलाक दे दो और फिर हम शादी कर लेंगे, प्रणाली ने कहा। वो आज सच में पागलपन पर उतर आई थी। अभिमन्यु ने जैसे तैसे प्रणाली को समझाया और फिर उसे लिटा दिया था। इंजेक्शन देने के बाद वो सो चुकी थी। उसके साइकोलॉजिस्ट ने कहा, यह खतरनाक होती जा रही है, आज तो हमने इसे रोक लिया है, लेकिन आगे नहीं रोक पाएंगे। उम्मीद है कि आप किसी तरह इन्हें मना लेंगे। अगर अभिमन्यु प्रणाली की बात को मानता तो उसे इशिका को तलाक देना पड़ता, और वो ये कभी नहीं चाहता था। प्रणाली के बारे में सोचते हुए गाड़ी में बैठे अभिमन्यु का दम घुटने लगा था। उसने अपनी टाई लूज की। अभिमन्यु ने अपने मन में सख्ती से कहा, कुछ भी हो जाए मैं इशिका को नहीं छोड़ूंगा। वाइफ है वो मेरी, और मैं उससे प्यार करता हूँ। अभिमन्यु इशिका को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। प्रणाली की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखकर कहा, अच्छा अचानक तुम सिंघानिया हाउस वापस क्यों आ गई? इशिका वहाँ उस रिंग को लेने के लिए ही आई थी। अचानक उसका हाथ अपने आप गले पर चला गया। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ जरूरी सामान लेने के लिए आई थी। अभिमन्यु समझ गया था कि जरूर इशिका के गले में कुछ नया है, और खास भी। इशिका ने रिंग को अपने टॉप के अंदर कर रखा था। अभिमन्यु ने इशिका के गले की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा लगता है कुछ ज्यादा ही कीमती है, तभी इस तरह छुपा कर रखा है। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा, जिसकी नजर उसके गले पर टिकी हुई थी। उसे परेशान करने के लिए उसने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ कीमती तो है, प्यार की निशानी जो है। अचानक ही अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। वो सख्त आवाज में बोला, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं दिया है। इशिका ने सिर हिलाकर कहा, मैंने कब कहा कि तुमने मुझे कुछ दिया है। इशिका ने उसे परेशान करना जारी रखा। अभिमन्यु ने अपने गुस्से और जलन को कंट्रोल करके सामान्य आवाज में कहा, अगर मैंने तुम्हें नहीं दिया है तो ये बिल्कुल कीमती नहीं होगा, इसे फेंक दो। नहीं, मैं इसे नहीं फेंक सकती हूँ, मुझे इसे वापस लौटाना होगा। जिसने भी मुझे ये दिया है, ये उसने एक विश्वास के साथ मुझे सौंपा था, और ये काफी कीमती भी है, तो इस तरह फेंकना सही नहीं होगा। इस बार इशिका ने नॉर्मली जवाब दिया, इतना भी कोई प्रेशियस नहीं होगा जितना तुम रिएक्ट कर रही हो, अभिमन्यु ने मुंह बनाकर कहा।
अरे नहीं, देखने में ही कीमती लगता है, तुम इसे देखना चाहोगे? इशिका ने जवाब दिया। वो रिंग को अपने गले से बाहर निकालने को हुई, तभी अभिमन्यु बोला, रहने दो, मुझे नहीं देखना है, और मैं क्यों किसी और का दिया हुआ गिफ्ट देखूं? हालांकि उसकी नजरें अभी भी इशिका के गले पर टिकी हुई थीं। अभिमन्यु की इस हरकत पर इशिका ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आई विंग की, तो अभिमन्यु चिढ़ते हुए बोला, क्या है? कुछ नहीं, बस अचानक ही मुझे यहाँ किसी के जलने की बू आ रही है, इशिका हंसते हुए बोली। मैं नहीं जल रहा हूँ, और मैं क्यों किसी से जलूंगा? तुम मेरी वाइफ हो, खूबसूरत हो तो किसी ने कुछ दे दिया होगा, अभिमन्यु सफाई देने लगा। इसी तरह वो बातें करते हुए वो राजवंश विला पहुंच चुके थे। हालांकि उन सब के मजबूर करने पर अभिमन्यु और इशिका को मेन विला में रहने के लिए जाना पड़ा, लेकिन घर पहुंचते ही वो सीधे वसुधा से मिलने पहुंचे। नायरा अभी भी उन्हें अंदर जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु भी वहां पर था तो वो कुछ कह नहीं पाई। जैसे ही वो वसुधा के कमरे में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वसुधा की सेफ को छोड़कर बाकी कीमती सामान को वहां से हटा दिया गया था। निवेदिता वहीं थी। वो इशिका के पास आकर धीरे से बोली, उस लालची लड़की ने दादी के कमरे का सारा कीमती सामान अपने कमरे में रखवा दिया है। दादी ने बहुत प्यार से वो आपके लिए इकट्ठा करके रखा था। चिंता मत करो, जो हमारा है वो हमसे कभी नहीं छीन पाएगी, इशिका ने बेपरवाही से कहा। आज उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, आज से पहले किसी ने उसके लिए इतना नहीं किया था। वसुधा ने उसके लिए प्यार से अपने पुश्तैनी गहने संभाल कर रखे थे, तो वही सिंघानिया हाउस में राधिका उसके लिए कमरा तैयार करवा रही थी। फिर इशिका ने वसुधा की तरफ देखा, जो आराम से सो रही थी। उनके आसपास लगी मशीन उनकी ठीक हेल्थ के बारे में अपडेट दे रही थी। उन्हें देखने के बाद वो वापस अभिमन्यु के साथ बाहर आने लगी। वसुधा की विला से बाहर निकलते ही अभिमन्यु ने इशिका से पूछा, निवेदिता तुम्हें कुछ बता रही थी, क्या कहा उसने? इशिका ने अभिमन्यु को सब कुछ बता दिया था कि कैसे नायरा दादी का कीमती सामान चोरी छुपे वहां से हटा रही थी। सब कुछ सुनते ही अभिमन्यु के चेहरे के भाव सर्द हो गए। उसने सख्ती से कहा, वो दादी के लिए दवाइयों का इंतजाम कर रही है, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रहा, वरना मेरी दादी के सामान के हाथ लगाने वालों को मैं किसी लायक नहीं छोड़ता। एक बार दादी को ठीक हो जाने दो, मैं सब देख लूंगा। इशिका ने सिर हिलाया, उसे दादी के सामान की चिंता नहीं थी। उसने अभिमन्यु से परेशान स्वर में कहा, मुझे डर है कि कहीं हमारी गैर मौजूदगी में वो दादी के साथ कुछ गलत ना कर दे। चिंता मत करो, मेरे डैड मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, वो उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं, तो उनकी आंखों के सामने उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अगर प्रशांत वसुधा की इतनी इज्जत ना करता तो वो कब का अभिमन्यु को मार चुका होता। ये वसुधा ही थीं जिनकी जिद के चलते अभिमन्यु को इतना सब कुछ मिल रहा था। वसुधा के होते हुए कोई अभिमन्यु का हक नहीं छीन सकता था। अचानक अभिमन्यु थोड़ा इमोशनल होने लगा, तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने तुरंत खुद को संभाला। इशिका की नज़र आसमान पर थी। उसने अभिमन्यु से कहा, आज का चांद कितना खूबसूरत है ना, आज फुल मून नाइट है तो ये कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। आज इशिका कुछ ज्यादा ही खुश थी, और अभिमन्यु उसके चेहरे पर ये खुशी महसूस कर सकता था। उसने मुस्कुराते हुए चांद की तरफ देखा, और फिर इशिका की तरफ, जिसका चेहरा चांद की चांदनी में चमक रहा था। इशिका की लाइट ग्रे आईज थी, उस पर लंबी आईलैशेस से उसकी आंखें और भी खूबसूरत लगती थीं। फिर अभिमन्यु की नज़र उसके होंठों की तरफ गई, जो ना ज्यादा मोटे थे और ना ही पतले। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली, इशिका आगे चलने लगी। तभी उसने महसूस किया अभिमन्यु उसके पीछे नहीं आ रहा है। वो उसकी तरफ पलटी तो उसकी नज़र अभिमन्यु की गहरी काली आंखों पर गई, जो इशिका को खोए हुए अंदाज में देख रहा था। अचानक अभिमन्यु के कदम इशिका की तरफ बढ़ने लगे थे। वहां बिल्कुल शांति छाई हुई थी। अभिमन्यु को करीब आता देखकर इशिका के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि उसे लगा कि अभिमन्यु उसके दिल की धड़कनों को सुन लेगा। अभिमन्यु उसके बिल्कुल पास आ गया था। वो उसके चेहरे पर झुका तो इशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अभिमन्यु की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, ये तुम्हारे बालों में कहीं से पत्ता उड़कर आ गया था। इशिका ने अपनी आंखें खोली और अभिमन्यु की तरफ देखकर हल्का सख्ती से कहा, तुम इसे निकालने के लिए मेरे पास आ रहे थे? हाँ, और क्या? अभिमन्यु ने जवाब दिया। मैंने सोचा, इशिका बोलते हुए रुक गई थी। अचानक अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने भौहें उठाकर कहा, अच्छा, क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं, इशिका ने हल्के गुस्से में कहा और वहां से जाने लगी। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे खींचकर बिल्कुल अपने करीब कर लिया। इशिका का सिर उसके चेस्ट से जा टकराया था। इशिका ने नजर उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखा। वो कुछ सोच पाती उससे पहले अभिमन्यु ने उसके होंठों को कैप्चर कर लिया था। इशिका उसे रोकना चाहती थी, पर अनजाने में उसके हाथ अभिमन्यु की बैक तक चले गए थे। अभिमन्यु ने उसे कसकर पकड़ रखा था और काफी डीपली किस कर रहा था। वो दोनों अपने उस लम्हे में खोए हुए थे कि तभी अचानक